Let's do the 60-second savings challenge. Step one, download Rocket Money. Step two, link your accounts and see every subscription you're paying for. Tap one you don't use and cancel it. That's money back every month. Step three, create a financial goal. $50 every paycheck, or let the app automatically move small amounts of cash when you can afford it. In a week, you'll forget you set it up. In a month, you'll see real dollars piling up. In a year, you'll be shocked at how much money you've saved. Bonus challenge, upload an internet or phone bill and let Rocket Money try to lower it. You only pay if they find you savings. On average, Rocket Money members can save up to $740 a year when using all the app's premium features. Users love the app with over 186,000 five-star ratings. Make saving money the resolution you actually keep. Start the 60-second savings challenge at rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
किसी भी राजस्थान के शहर से इरफान खान के बाद आज तक लोगों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किसी को एडमिशन नहीं मिला। कई ऐसे मोमेंट आए लाइफ में यार, जब ऐसा लगा कि यार क्या कर रहे हैं यार, धक्के खा रहे हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाना, मतलब ये कब तक चलेगा सिलसिला।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेजोश टॉक्स पॉडकास्ट पर, जहां हम भारत के कोने कोने से आए हुए प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत नाग, और आज हम बात करने जा रहे हैं अनूप सोनी से, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय में डिग्री प्राप्त की और फिर कई बेहतरीन फिल्में और टीवी शोज में काम किया, जैसे गंगाजल, अपहरण, सीआईडी और क्राइम पेट्रोल। अनूप जी, आपका स्वागत है तेजोश टॉक्स पॉडकास्ट पर। हमें ये बताइए कि आपको एक्टर बनने का विचार कब और कैसे आया?
जब आप थोड़ा होश संभालते हैं, जब आपके आप थोड़ा सा करियर को लेकर सोचना शुरू करते हैं, तो वो एज जो थी, यू नो, जिसे कहते हैं, से फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए फ्रॉम 13 to 20 की जो एज उम्र होती है, वो उम्र मेरा सारा पीरियड 7 साल का जयपुर में गुजरा, जिसका इम्पैक्ट बहुत रहा। तो वहाँ हिंदी बेहतर हुई, और वहीं पे ये जो एक्टर बनने का जो दिमाग में एक ख्याल आया, वो वहीं से शुरू हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि जयपुर से शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होगा, फिल्में अच्छी लगती थी, लेकिन चूंकि उससे पहले तक हम इतने बड़े नहीं थे कि हम फिल्में देखने अकेले जा पाएँ, जयपुर में ऐसा होने लगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा दोस्तों के साथ फिल्में देखना शुरू किया, तो उसका इन्फ्लुएंस शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं ये एक इंडस्ट्री, ये क्राफ्ट, मैं इंडस्ट्री से ज़्यादा कहूँगा क्राफ्ट, ये मुझे अट्रैक्ट करने लगी कि यार ये क्या चीज़ है यार, एक्ट करते हैं लोग, उसका हम पे असर होता है, कोई आदमी रोता है, कोई आदमी इमोशनल होता है, और उस इमोशन का असर हम पर होता है और हम भी उस इमोशन में बह जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्राफ्ट है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक 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 अट्रैक्शन तो शुरू हो गया था। पर अब मैं बात कर रहा हूँ मिड 80s की, जब इतना एक्सपोजर नहीं था, जब आप जयपुर जैसे शहर में रहकर ये नहीं सोच सकते थे कि यार मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन जाऊँ और बम्बई चला जाऊँ, वो बड़ा मुश्किल काम था। और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में एक क्लैरिटी तो ज़रूर थी, वो क्लैरिटी शायद मुझे लगता है कि हर लो मिडिल क्लास बच्चे के मन में होती है। आप अपने माँ बाप को बहुत मेहनत करते हुए देखते हैं, एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में उनको ज़िंदगी को आगे चलाते हुए देखते हैं, तो ये समझदारी तो शायद बहुत जल्द उम्र में आ गई थी कि हाँ यार, हमारे पेरेंट्स के रिसोर्सेज इतने ही हैं और हमें भी जो है थोड़ा सा उन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर। तो वो एक समझदारी बहुत कम उम्र में आ गई थी। तब ये इतना मटीरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस भी नहीं था जो आज है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस है बच्चों पर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे वो जानते भी हैं कि उनके पेरेंट्स वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो कभी कभी शायद इच्छा रखते हैं और मांग भी लेते हैं, और पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ यार, बच्चों की ये ज़िद पूरी की जानी चाहिए। तो ये क्लैरिटी दिमाग में थी कि यार एक्टर बनने का एक शौक तो पैदा हो रहा है मन में, लेकिन यार इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है क्या, वो रास्ता नहीं पता था। तो ये सोच लिया कि यार देखो, जो भी है, एक लाइफ में, एक समाज में, एक सोसाइटी में एक डिग्निफाइड, एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो कहाँ से आएगा? वो ये आएगा कि मैं एक अच्छी एजुकेशन, एक प्रोफेशनल एजुकेशन लूँ, और फिर जो है मैं अपने उस प्रोफेशन में थोड़ा आगे बढ़ूँ, और फिर देख लेंगे एक्टिंग का क्या करना है। तो तो ये सोचकर मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएशन ख़त्म करते ही मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। इस दौरान मैं जयपुर में ना थिएटर करने लगा था, जो वहाँ पे एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स हैं और काफ़ी मंझे हुए लोग थे जो रंगमंच काफ़ी सालों से करते हुए आ रहे थे, तो उनके साथ थिएटर करने लगा। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार ठीक है, लॉ करते रहेंगे, लॉयर बनेंगे, और उसके बाद थिएटर एक शौक की तरह से रहेगा, देखते हैं उसमें आगे क्या मौका मिलता है। तब तक भी एक क्लैरिटी नहीं थी कि इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है या इसको आगे चल के यू नो इट विल बी और ब्रेड एंड बटर। तो ऐसे करते करते लॉ का फर्स्ट ईयर पूरा होने वाला था, तब मुझे जयपुर रंगमंच पे कुछ जो सीनियर लोग थे उन्होंने बताया कि यार देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रन करता है, और बहुत ही प्रेस्टिजियस थिएटर एक्टिंग स्कूल है जहाँ से बड़े बड़े नामी गिरामी लोग निकले हैं। और तब तक ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह, आलोक नाथ, नीना गुप्ता, ये ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे जो काफ़ी नाम कमा चुके थे, अनुपम खेर, ये सब लोग सिनेमा में भी। तो मैंने कहा यार ये ठीक है, कर लेते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई कर लेते हैं, मतलब ये कोई ऐसा हलवा नहीं है, मतलब कि आपने सोचा हाँ मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ट्राई कर लेता हूँ, तो दे देते हैं एग्ज़ाम। इट्स एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे सिर्फ 20 सीटें होती हैं और ऑल ओवर इंडिया से 20 स्टूडेंट्स आते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। फिर ऐसा लगा यार कि क्या करूँ, ट्राई करूँ, मुश्किल है। फिर किसी ने एक दिन कहा कि यार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर स्टेट से लोग लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ कुछ राजस्थान से आए, कुछ नॉर्थ ईस्ट से आए, कुछ यूपी से आए, कुछ दिल्ली से, पंजाब से। तो ही सेड कि राजस्थान से 1984 में लास्ट एडमिशन हुआ था इरफान खान साहब का, बहुत ही मंझे हुए एक्टर, हम सब जानते हैं उनका काम, हमने देखा है, वो भी जयपुर के रहने वाले थे। इसे जयपुर में ना 84 के बाद इरफान, जयपुर तो छोड़ो, राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, किसी भी राजस्थान के शहर से इरफान खान के बाद आज तक लोगों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किसी को एडमिशन नहीं मिला। मतलब करते होंगे लोग, रिजेक्ट हो जाते होंगे किसी भी कारण से। तब लगा यार ये तो एक और चैलेंजिंग चीज़ है। बस तो मैंने ठान लिया, मैंने कहा यार एक अटेम्प्ट तो करना ही है और बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही सीरियसली करना है। अब मैंने बहुत सीरियसली तैयारी की थी एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिल गया। तो थोड़ा जो वो एक जो जिंक्स था कि भाई 84 के बाद इरफान साहब के बाद किसी का एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर हमें मौका मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने का। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, क्योंकि मेरा कोई घर में या उस तरह के माहौल में लिटरेरी बैकग्राउंड तो था नहीं कि हम लिटरेचर पढ़ते थे घर में, ऐसा कोई भी माहौल नहीं था, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। नेशनल स्कूल ड्रामा जाने तक मेरे लिए एक्टिंग का मतलब था भैया डायलॉग दो, डायलॉग बाजी करवाओ और डायलॉग बुलवाओ, देखो कितने स्टाइल से हम डायलॉग बोलते हैं, ये एक्टिंग का मतलब था मेरे लिए। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद पता चला कि नहीं भाई, देर इज़ अ लॉट टू एक्टिंग, देर इज सो मच टू लर्न। फर्स्ट ईयर में हमको पढ़ाया जाता था मॉडर्न इंडियन ड्रामा, एस्थेटिक्स, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न इंडियन ड्रामा, स्टेज डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट। मुझे लगा यार ये गलत जगह आ गया यार, मैं तो एक्टिंग सीखने आया था, ये कुछ और पढ़ाई लिखाई कराने लग गए, होमवर्क देते हैं, प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। बट आई थिंक आफ्टर 6 months आई रियलाइज कि दीज आर पार्ट ऑफ दैट होल बिल्डिंग अप योर कैरेक्टर एज एन एक्टर। और मैं हमेशा से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा मेरी लाइफ को शेप अप करने में, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कभी एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करते हैं, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक्टर बनना है इसलिए आप एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करें। एक्टिंग वर्कशॉप्स कैन बी अ गुड टूल फॉर अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो एक फेज होता है। तो मेरे लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई एम रियली थैंकफुल।
अनूप जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाला दौर आपके लिए फायदेमंद था और इस संस्था ने आपके क्राफ्ट को खूब निखारा, पर ग्रेजुएशन के बाद आपके अगले कदम क्या थे?
लेकिन जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बाहर निकलते हैं और अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई मुझे कुछ और करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तब थोड़ा सा एक रियलिटी चेक होता है कि अरे यार अब क्या। वहाँ तो आप एक बहुत ही कुकून में, एक बहुत ही सेफ जोन में आप अपनी लाइफ को जी रहे थे। पर खैर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले, फिर कुछ एक दो साल तक इधर उधर वर्कशॉप्स की, बच्चों के साथ वर्कशॉप की, ऐसा लगा कि थोड़ा जो ज्ञान सीखा है वो बांटा जाए इधर उधर। फिर ये डिसाइड हुआ कि हाँ यार, अब एक्टर हैं तो थिएटर तो हम करते ही हैं, रंगमंच तो हम करते ही रहेंगे और कर भी रहे हैं, तो क्यों ना यार एक मौका अपने आप को दिया जाए स्क्रीन पे भी आने का। तो यही सोच के फिर बम्बई कूच किया गया। अब जैसा कि होता है, मैं बात कर रहा हूँ लेट 90s की, जब मैं बम्बई में आया अपने कुछ दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ। तो यहाँ सीनियर जूनियर, सीनियर्स जो थे उनके साथ थोड़ी बातचीत करके समझ में आया कि हाँ भैया माहौल है। और सब सीनियर्स ने यही कहा, देखो भाई आ गए हो लेकिन लगना पड़ेगा, ऐसे मत सोचो ये कि भैया आज आए हो तो कोई बैठा नहीं है तुम्हें सीधा हीरो लॉन्च करने के लिए। तो पता नहीं, शायद कहीं ना कहीं जो माहौल था उस वक्त सिनेमा का या जो कंटेंट बन रहा था उसको देख के यार ये लगा कि भाई हीरो तो नहीं बन पाएंगे, मुश्किल है। तो लेट्स बी रियलिस्टिक, हीरो नहीं बन पाएंगे क्योंकि जिस तरह का सिनेमा बनता था ऐसा लगता था यार हम कहीं फिट ही नहीं हो रहे उसमें, फिर क्या करें यार। अब जहाँ मिलने जाओ, लोगों से मिलने जाते थे, अब उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, लेट 90s में, मतलब मोबाइल फ़ोन नया नया आया ही था, अफोर्डेबल भी नहीं था हमारे लिए तो बिल्कुल भी। तो हमारे पास एक, जहाँ किराए के मकान में रहते थे वहाँ लैंडलाइन भी नहीं थी, तो घर के नीचे एक PCO था। तो हम क्या करते थे, उस PCO वाले के साथ डील थी, हम जहाँ मिलने जाते थे अपनी फ़ोटो के पीछे उस PCO वाले का नंबर लिख के आते थे, जो उसका अपना एक प्राइवेट नंबर था, वो नंबर लिख के आते थे। और जब उस लोग हमें कांटेक्ट करने के लिए उस नंबर पर कॉल करते थे तो वो हमसे 2 रुपये पर कॉल लेता था उस वक्त, कि भैया जो कॉल आएगा मैं तुम्हारा मैसेज रिसीव करूंगा। और वो ये कहता था, ओके जी आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है, और ही विल पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू अस एंड वील कॉल बैक। तो ये सिस्टम चलता था। अब होता ये था कि अब नए नए आए, काम तो है नहीं कुछ, तो हर आधे घंटे में नीचे उतर जाते थे बिल्डिंग से, भाई कोई आया फ़ोन यार, अरे नहीं आया यार, तो ऐसे यार, अरे तो बार बार मत आओ यार नीचे, मैं बता दूंगा। ऐसे कैसे बताएगा भाई, हमारे घर में कोई लैंडलाइन थोड़ी है, हमें ही आना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा अच्छा ऐसा है, 2 घंटे के अंदर अंदर मत आया करो, क्योंकि जिसका भी फ़ोन आएगा मैं उसको बोलूँगा कि हाँ साहब मैं मैसेज दे दूंगा, वो लोग आपको 1-1.5 घंटे में फ़ोन करेंगे। तो फिर हमने 2-2 घंटे बाद नीचे जाना शुरू कर दिया, हर 2 घंटे में पहुँच गया यार कोई कॉल आया। तो रोज़ एक यही उम्मीद रहती थी कि आज कहीं से कोई कॉल आएगा। रोज़ सुबह हम लोग लिस्ट बनाते थे लोगों को कॉन्टैक्ट करने की। और उस वक्त ये यू नो एज एन एक्टर इतना ऑर्गेनाइज नहीं था जैसे आज। आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आसान है, आज भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एक्टर्स बनने वालों की भीड़ बहुत है। लेकिन आज एटलीस्ट कम से कम जो एक्टर बम्बई आता है उसको लगता है कि यार कास्टिंग डायरेक्टर है, फलाना कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं वहाँ जाता हूँ, ऑडिशन देता हूँ, मिलता हूँ, थोड़ा सा एक एटलीस्ट आपको एक रास्ता तो पता है। उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर्स थे ही नहीं, हीरो हीरोइन की कास्टिंग तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कर लेते थे, बाकी जो दूसरे अलग तरह के रोल्स होते थे या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल्स हो वो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कर लेते थे, फिर बाकी जो बचे कुचे रोल्स होते थे उसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती थी। तो हमें ये समझ में आया कि भैया असिस्टेंट डायरेक्टर को पकड़ना पड़ेगा, वो ही हमें कुछ काम दिला सकता है। तो फिर ये जद्दोजहद शुरू हुई। बस अब ये चल ही रहा था, कई ऐसे मोमेंट आए लाइफ में यार जब ऐसा लगा कि यार क्या कर रहे हैं यार, ये धक्के खा रहे हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाना, मतलब ये कब तक चलेगा सिलसिला, ये ज़रूर दिमाग में आता था। और कई बार ऐसा होता था कि चलते हैं यार वापस, नहीं यार ये लाइफ तो नहीं जी सकते यार, यू नो कि खाने का ठिकाना नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, यू नो देयर वाज नो हिम्मत थी, ऐसा नहीं था कि हिम्मत टूट रही थी, लेकिन वो पूरा जो एक सिस्टम था ना स्ट्रगल का मिलना जाकर। तो लकीली मेरी लाइफ में वो वाला स्ट्रगल नहीं है, अब मैं ग्लोरीफाई करना चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा वाला स्ट्रगल नहीं था कि मैं स्टेशन पे सो रहा हूँ या खाने के पैसे नहीं है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये बेसिक एक था, क्योंकि मैं हम 2-3 लोग दोस्त मिलकर रहते थे, और कहीं ना कहीं एक दिल में ये भी था कि यार पेरेंट्स ने थोड़े पैसे दिए हैं, बार बार उनसे नहीं मांगना, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऐसा भी नहीं था कि पिताजी के पास कुछ यू नो पेड़ लगा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि यू बिलोंग टू गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी थी, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। फिर मैंने कहा यार एक काम करता हूँ मैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलसिला ऐसा नहीं चल सकता रोज़। एक आध मोमेंट ऐसा आया था मेरी लाइफ में जब मुझे लगा कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मैं शहर में नहीं रुक पाऊँगा। वो कई बार ऐसा होता है ना कि आपका बेस बन रहा होता है और फिर एक ट्रिगर पॉइंट होता है। तो ट्रिगर पॉइंट ये था, फोटोशूट तक के पैसे नहीं थे हमारे पास। फोटोशूट जो कराते हैं, एक एक्टर फोटोशूट कराता है और फिर उन फोटोज को लेकर ऑफिस टू ऑफिस, डोर टू डोर जाता है। एक तो मैंने क्या किया था, एक बड़े अपनी तरफ से, क्योंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट थे, डिज़ाइन करके, तो एक ब्लैक शीट जो होती है ना, वो शीट्स खरीद के उनका एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर में अपने नाटक के जो पिक्चर्स थे, थिएटर के अलग अलग रोल जो किए थे, उसके फोटोज़ लगा के मैं वही लेके जाता था दिखाने के लिए। और एक दौर चल रहा था जहाँ एक लो फेस था कि यार नहीं रुक पाएंगे इस शहर में, मतलब मैं नहीं जी पाऊँगा ऐसे रोज़ यार, सुबह उठकर ये जद्दोजहद करना। और मैं एक बार वो प्लास्टिक के बैग में वो ये फोल्डर लेकर आ रहा था, रास्ते में अचानक बारिश हो गई, तो जिस स्टेशन पे मैं उतरता था उस स्टेशन से मेरा घर, अगर मैं टैक्सी या ऑटो पकड़ता हूँ तो 9 या 10 रुपये उस वक्त खर्च होते थे, मिनिमम वाला जो अमाउंट था। मुझे लगा यार मैं वो 10 रुपये भी बचाता था तो मैं क्या करता था, पैदल जाता था स्टेशन से घर तक वो 9-10 रुपये बचाने के लिए भी। तो मैंने चलना शुरू किया, अचानक ऑब्वियसली बॉम्बे की बारिश सबको पता है, बारिशों का मौसम था, अचानक तेज़ बारिश हुई और इतनी तेज़ बारिश हुई तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए ना भागना शुरू किया, वो प्लास्टिक का बैग, द फोल्डर इन साइड विद माई पिक्चर्स, और मैं भाग रहा था। अब थैली भी हमारी घटिया क्वालिटी की थी कि वो नीचे से भागते भागते वो नीचे से फट गई और फोल्डर उसके नीचे से निकला। और आप समझ लीजिए कि अगर मैं फुटपाथ पे भाग रहा हूँ तो ये रोड पे जो पानी भर चुका था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो वो मतलब आप इमेजिन कीजिए कि वो फोल्डर ऐसे बिखरा और सड़क पे आपके फोटोग्राफ्स जो हैं तैर रहे हैं। और मतलब मैं एक सेकंड के लिए वहाँ रुका और जैसे कहते हैं ना हताशा की हाइट, मतलब आपको ऐसा, उस वक्त उम्र भी कोई ऐसा ज़्यादा नहीं थी, 25-26 की हो गई थी, लेकिन हाँ ठीक है यार, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पता नहीं अचानक से ना 2 आंसू टपक गए उसको देख के और मन हुआ उठाऊं नहीं उठाऊं। और आई थिंक वहां पे मैंने आई डिसाइडेड नहीं यार मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं है ये धक्के खाने लाइफ में, मैं देख लूंगा। मैं वापस, माय पेरेंट्स हैड पोस्ट यू नो शिफ्टेड टू दिल्ली बाय देन फ्रॉम जयपुर, तो मैंने कहा यार घर जाऊंगा, वहां जाके सोचूंगा क्या करना है लाइफ के साथ और मैं जा रहा हूं। और ये तय करके मैंने वैसे ही बड़े दुखी मन से वो तैरती हुई फ़ोटो को उठाया, किसी तरीके से ख़राब हो ही चुकी थी सारी, एंड आई रीच द प्लेस जहाँ मैं ठहरा, जहाँ मैं रहता था किराए पे। कोइंसिडेंटली कहते हैं ना कि ऐसे वक्त में अगर आपका दोस्त वोस्त घर पे होते तो आप उनसे बातचीत करते। अब फॉर्चुनेटली कहूँगा अनफॉर्चुनेटली कहूँ, उस दिन जो मेरे रूममेट्स थे दोनों मेरे दोस्त, वो भी नहीं थे, मैं अकेला और डिप्रेसिव अकेला, कमरा ऐसा लग रहा था काटने को दौड़ रहा है। तो कमरे में एक वो जो मोटिवेशनल स्पिरिचुअल किताबें होती हैं ना वो रखी हुई थी, नींद भी नहीं आ रही थी, मैंने उठाया और ऐसे ही शफल करके पन्ना खोला और वो हिंदी की किताब थी, वो उसमें से जैसे होता है ना खुलते ही जो ऊपर की 3 लाइनें मेरी नज़र में पड़ी जिनको मैंने पढ़ना शुरू किया, नॉट दैट आई रेड दैट बुक, तो मैंने बीच में से ही कहीं खोले पन्ने और पहली 3 लाइनें थी कि अगर आप जीवन में जिस ऐश्वर्य के साथ जी रहे हैं, अगर आप उससे बेहतर ऐश्वर्य चाहते हैं तो आपको पुराने कंफर्ट्स को, ऐश्वर्य को भूलना पड़ेगा। और मेरे ऐश्वर्य क्या थे पुराने, यही था दिल्ली चला जाऊंगा, ठीक है यार मम्मी है, घर का खाना बनाएगी, सुबह चाय मिलेगी, घर होगा, छत होगी, है ना, तो वो एक कंफर्ट जोन जो लिमिटेड सोर्सेज का था, मैं उस कंफर्ट, एंड आई डोंट नो समहाउ वो 2 लाइनों ने, बहुत ही साधारण सी लाइनें थी, मुझे लगा नहीं यार अगर मैं दिल्ली चला गया फिर से वही, वो ठीक है वहाँ कुछ करूँगा, ठीक है घर पे मम्मी रात को डिनर भी देगी, लंच भी देगी, ब्रेकफास्ट भी देगी, लेकिन फिर वहीं रह जाऊँगा यार। और ये लाइन कि आपको पुराने ऐशो आराम को और पुराने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, अब ये साधारण सी बात उस वक्त ऐसी अटकी और मैंने उसी रात डिसाइड किया कि बॉस अब मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इस शहर में रहूँ, जो करना है अब यही करेंगे।
जो आप अभी सुन रहे हैं, अगर आपको पसंद आया हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो फॉलो बटन और ठीक उसके बगल में बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आप मुंबई में रहेंगे, आपने ऐसा क्या किया जिससे आपका करियर सफल होने लगा?
जब ये डिसाइड कर ही लिया था कि भैया अब ये शहर छोड़कर नहीं जाना, अब तो कुछ करके ही जाएंगे इस शहर से, तो थोड़ी एनर्जी और आ गई, थोड़ा एक फोकस मिल गया। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने आप को खाली नहीं रखूंगा, काम नहीं मिलता, मैंने एक एक्टिंग स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, बिकॉज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ग्रेजुएट था तो किशोर नमित कपूर साहब का एक एक्टिंग स्कूल चलता था वहाँ पर, काफ़ी फिल्मी बच्चे आते थे तो वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद थोड़े कुछ ऐसा मिलते जुलते तो रहते थे, और अचानक मुझे सी हॉक्स नाम का एक शो के बारे में पता चला और आई ट्राई टू रीच आउट टू द मेकर्स. अनुभव सिन्हा काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं जिनके आप काम देख चुके हैं, उनकी बहुत सारी फिल्में अभी देख चुके हैं. वो अनुभव सिन्हा इस शो को डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैं किसी तरीके से उन तक पहुंचा. उनके असिस्टेंट ने मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि यार कुछ बोल के दिखा दो, यार कुछ सुना दो. मैंने वहीं बोल के दिखाया, बस उन्होंने कहा बट डन. तो ऐसे हो जाता था, ऑडिशन राउंड्स वाले ऐसे होते थे कि वहीं के वहीं कुछ एक एज एन एक्टर आपने कुछ करके दिखाया, सामने वाला जज कर लेता था हाँ यार ये कर लेगा. एंड सी हॉक्स मैंने किया. इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ टेलीविजन. यू टी वी यूज टू मेक दैट शो, दे वर द प्रोड्यूसर्स. तब तक उन्होंने फिल्में बनानी शुरू नहीं की थी. एंड दे वॉज मिस्टर ओम पुरी, माधवन वॉज देयर, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, निकी अनेजा, बहुत काफ़ी एक्ट, सिमोन सिंह. बड़ा शो था, वो शूट होता था मॉरिशस में और गोवा में. बस आई थिंक वो एक, उसको मैं पहला बड़ा ब्रेक कहूँगा. उस शो के बाद फिर मुझे टेलीविज़न में काम को लेकर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी. ऐसा सिलसिला चला कि मतलब एक के बाद एक, और उन दिनों वीकलीज होते थे तो आप एक साथ चार चार शोज़ कर सकते थे. सो दोज डेज डूइंग टेलीविज़न वॉज लाइक डूइंग फिल्म ओनली, बिकॉज कॉन्टेंट, इनफैक्ट आई वुड से कि फिल्मों से बेहतर कॉन्टेंट था अर्ली लेट 90s और अर्ली 2000 तक टेलीविज़न का कॉन्टेंट, टिल डेली सोप्स स्टार्टेड. तो बस टेलीविज़न में इतना बिजी हो गए कि वक्त ही नहीं मिला. मतलब डेट्स का प्रॉब्लम होने लग गया था, क्योंकि एक साथ चार चार शोज़ में मैं लीड रोल कर रहा हूँ, कॉमेडी भी कर रहा हूँ, सीरियस रोल भी कर रहा हूँ. तो वो सी हॉक्स से जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं. और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं तो फिल्में करना चाहता था, ये टीवी में बिजी हो गया. फिर उस दौर में लकीली मुझे गॉडमदर फिल्म मिली, मैंने गंगा जल, अपहरण, प्रकाश झा, विक्रम भट्ट, इन लोगों के साथ फिल्मों में काम किया. अब ये सिलसिला चल रहा था फिल्मों का, जैसे मैंने कहा ना कि एक फ्लो में आप चलते रहो. और उसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा यार, फिल्मों में अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं. एंड देन बालिका वधू हैपेंड. कहानी सुनी, अच्छी लगी. तब तक थोड़ा डिफरेंट था ये, ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल टिपिकल जैप जैप वाला जो शूटिंग चल रहा था उन दिनों डेली सोप्स का दौर, उससे अलग था बालिका वधू. कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज दे से. बालिका वधू इतना ज़्यादा हिट हुआ, और ये बालिका वधू चल रहा था, चलते चलते क्राइम पेट्रोल मेरी ज़िंदगी में आ गया. मैंने इससे पहले कभी एंकरिंग नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि एंकरिंग के बेसिक्स क्या होते हैं. मुझे सिर्फ ये था कि यार मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. क्राइम पेट्रोल आया, वो भी किया. बालिका वधू, क्राइम पेट्रोल साइमल्टेनियसली चलते रहे और मेरी ज़िंदगी के 10 साल उसमें निकल गए. दे बोथ वर वेरी बिग गेम चेंजर इन टेलीविजन, ऐसा लोग कहते हैं. बहुत सारे आर्टिकल्स छपे कि हाँ यार, ये एंटरटेनमेंट चैनल पे क्राइम शो आया, हिट हो गया है, मीम्स बनने लगे. फिर जब मीम्स का दौर आ गया तो 10 साल मेरी ज़िंदगी उन दोनों शोज़ में स्प्रेड होकर चली गई. और आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि इन दोनों शोज़ ने मुझे बहुत नाम दिया. एक जो पहचान होती है एज एन एक्टर, कि यार हाँ, क्रेडिबल पहचान बनी, एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस मिला सोसाइटी में. बट देन कहते हैं ना, एक्टर तो अंदर से बहुत इच्छुक होता है अपने पंख फैलाने को. फिर मुझे लगा यार ये क्या हो गया यार, मुझे तो फिल्मों में एक्टिंग करनी थी. मुझे तो, और तब तक वेब सीरीज़ का दौर भी आ चुका था, और ऑब्वियसली क्राइम पेट्रोल लार्जर देन लाइफ हो चुका था. मतलब ऐसा हो गया था कि मेरी पहचान अब यही थी कि ये क्राइम पेट्रोल के एंकर अनूप सोनी. कोई ये नहीं कहता था एक्टर अनूप सोनी. अब मुझे ये खलबली शुरू हो गई कि यार मैं तो एक्टर हूँ यार, मुझे तो एक्टिंग करनी है यार, ये कैसे होगा. एंड देन इस वेब सीरीज़ के दौर में अचानक, अगेन आई वुड से आई वॉज लकी, मेरे पास एक वेब सीरीज़ आई जिसका नाम था टेस्ट केस. उसको शुरुआत में नागेश कुकुनू डायरेक्ट कर रहे थे, फिर मिस्टर विनय वाईकुल ने डायरेक्ट किया, निमृत कौर, अतुल कुलकर्णी, ये सब लोग थे. अतुल वॉज विद मी इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑल्सो. तो मुझे लगा यार ये अच्छा शो है, और उसकी शूटिंग करते हुए, टेस्ट केस की, इट वॉज अ वेरी वेल मेड वेब सीरीज़, उसकी शूटिंग करते हुए मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, बहुत मिस की मैंने एक्टिंग यार. ये पूरा क्राइम पेट्रोल के फेज में मुझे एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं इतना बिजी हो चुका था. एंड दैट्स द टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अब मैं, यू नो, मैं एक्टर हूँ. मेरे को कोई चीज़ अगर सेटिस्फाई कर सकती है तो वो एक्टिंग है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, टू दीज प्रोजेक्ट्स, कि इन्होंने मुझे इतना नाम और ये मौका दिया. बट अब लास्ट पिछले 2-3 सालों से मेरा फोकस एक्टिंग पर है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुझे एक एज एन एक्टर देखें. काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की भी हैं, कर भी रहा हूँ, और ये सिलसिला चलता रहेगा. मुझे लगता है कि ये जर्नी में एक चीज़ शायद आपको भी समझ में आई होगी और मुझे भी समझ में आई कि यार इसका कोई ना डेस्टिनेशन नहीं होता है, स्पेशली मैं एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी ये नहीं होता अरे मैं यहाँ पहुँच गया अब मैंने अचीव कर लिया। ये एक ऐसा फील्ड है, एक तो ये अनस्पेशलाइज्ड फील्ड है, देखिए ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब लोग किस में से कोई लोग सोचना चाहते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, आई वुड ओनली से दैट कि इसको एक जर्नी मानकर चलिए, क्योंकि ये एक नॉन स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें हर आदमी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक MBA, हर आदमी आपका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन में आ सकता है, आप उसके प्रोफेशन में नहीं जा सकते। आप ये नहीं सोच सकते अरे यार बहुत सारे यार सारा दिन क्लिनिक में बैठा रहता हूँ, रोज़ सुबह पेशेंट्स को देखता हूँ, यार बोर हो गया यार, मैंने कॉलेज में बहुत एक्टिंग की, चलो यार मैं एक्टिंग के लिए ट्राई करता हूँ। हो सकता है उसको मौका मिल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट वो नहीं है, अगर वो अच्छा है तो। लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते यार बहुत एक्टिंग कर ली यार, थोड़ा बोर हो गया रोज़ शूटिंग पे जा जाके, चलो यार कल से ना मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता हूँ, थोड़े केसेस वेसेस देखूंगा। नहीं हो सकता ऐसा। या मैं थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता हूँ, यार नहीं हो सकता भाई, 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। सो ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है और यहाँ पे सक्सेस जो है, यस टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है भाई कि एक जर्नी की तरह से मान के चलो एंड प्लीज डू वर्क ऑन योर क्राफ्ट इफ यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर।
तो दोस्तों ये थे अनूप सोनी, जिन्होंने अपने तजुर्बे से बताया कि जिंदगी के हर एक पल को किस तरह इंजॉय करते रहना चाहिए और कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। आज के पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने जोश को बनाए रखने के लिए फॉलो बटन और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज का एपिसोड सुनकर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद अभी जोश की जरूरत हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड ने आपको एक जोश भरा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। मैं सिद्धांत नाग आपसे फिर मिलूंगा द जोश टॉक्स पॉडकास्ट के अगले एपिसोड पर।
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.